ये सुनकर राजवीर और भी चौंक गया और बोला, कीमती चीज? कौन सी कीमती चीज? वहां क्या रह गया है? वहां पर और वहां का डाक विला वैसे ही तैयार हो चुका है, वहां पर ऑलरेडी सब कुछ तुम्हारे हाथ में मौजूद है, तो तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? किसी भी भरोसेमंद आदमी को भेजकर अपनी वो कीमती चीज मंगवा सकते हैं। तभी सम्राट बोला था, वो कीमती चीज आपके लिए एक तोहफा है गुरुजी। इस तरीके से भला मैं किसी और को लेने के लिए कैसे भेज सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि उसे आप खुद जाकर लें। अब ये सुनकर तो राजवीर हैरान रह गया। फिर अगले ही पल वो बोला था, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां जाऊं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी के बिना कहीं नहीं जाता। आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और अभी उसे बुखार भी चढ़ सकता है, तो मैं उसे लेकर सफर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं कल चला जाऊंगा उसे लेकर। तभी सम्राट बोला था, ऐसा कैसे हो जाएगा? और वैसे भी वो बीमार है, मैं उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करवा दूंगा, वो कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगी और ना ही कोई उसे देख पाएगा। लेकिन आपको वो गिफ्ट लेने तो आज ही जाना होगा गुरुजी। वैसे भी मैं आपका चेला हूँ, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अगर मैं आपको कोई स्पेशल गिफ्ट लेने के लिए भेज रहा हूँ तो आपको जाना चाहिए। अब ये सुनकर राजवीर ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला था, कहीं मेरे पीछे ये कोई बेवकूफ़ी ना कर दे, लेकिन अगर ये इतने यकीन से कह रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। राजवीर पर जाने जोश चढ़ चुका था और वो बोला था, ठीक है, मेरे लिए चॉपर रेडी करवाओ, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, रात से पहले मैं अपनी बीवी के पास वापस भी आ जाऊँगा। वो चीज़ कहाँ है उसकी डिटेल्स मुझे दो। ये बोलकर सम्राट ने उसे अपने शब्दों में सारी जानकारी बता दी। उसने जल्दी ही राजवीर के लिए सब कुछ रेडी करवाया और उसे वहां से रवाना कर दिया। राजवीर के जाने के बाद सम्राट ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला था, माफ़ करना गुरुजी, सरप्राइज़ तो वैसे भी आपके लिए है, आप निराश नहीं होंगे उसे देखकर, लेकिन आज आपको भेजना मेरी मजबूरी थी। आज मुझे आपको यहाँ से दूर भेजना ही था, क्योंकि मैं आज अपने क्रश से अकेले मिलना चाहता हूँ और उसने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर घर पर कोई हुआ तो वो वापस चली जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि आज आप यहाँ हों, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई और आपने उससे मिलने की जिद कर दी होती तो मैं आपको मना नहीं कर पाता और मैं उसे भी नाराज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए आज तो आपको जाना ही होगा, लेकिन वादा करता हूँ अगली मीटिंग में आपको उससे ज़रूर मिलवाऊंगा। ये बोलते हुए सम्राट थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिलहाल उसने जल्दी ही नौकरों की पूरी फौज तैयार करवा दी। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इटालियन, हर तरह के फूड उसने वहाँ ऑर्डर कर दिए थे और सब कुछ बनवाना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर नानी माँ एक बार फिर से मेंशन में मौजूद थी। आहान नानी माँ को काफ़ी देर से गले लगाए खड़ा था। नानी माँ से मिलने के लिए सब लोग लाइन लगाकर खड़े थे, लेकिन आहान तो नानी माँ को छोड़ने का नाम ही नहीं था। तभी नानी माँ ने आहान के कान में हंसते हुए फुसफुसाकर कहा, अरे बिटवा, ये क्या कर रहा है? हम केवल 2-3 दिन के लिए ही तो गए थे, अभी हमें गए 4 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और तुम तो हमें इस तरह गले लगाए खड़े हो मानो हम तुम्हारी नई नवीली दुल्हनिया हों जो मायके से गई थी और अब वापस आई है, और तुम इस तरह प्यार जता रहे हो। नानी माँ की देहाती भाषा सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबको हंसते देखकर आहान थोड़ा शर्मिंदा हो गया और जल्दी से नानी माँ से अलग होकर खड़ा हो गया। नानी माँ के गालों पर पपी देते हुए वो बोला था, अरे नानी माँ, आप नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या हो। एक बार को मैं अपनी दुल्हनिया के बिना रह सकता हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया है, और ख़ासकर जब जब रौनक आपसे मिलने के लिए गई थी। आपको पता है उस वक्त प्रिंसेस को संभालने की सारी जिम्मेदारी मुझे अकेले निभानी पड़ी। मुझे आपकी इतनी याद आई कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप होती तो मैं आसानी से अपनी प्रिंसेस को संभाल लेता और रौनक से मुझे इतनी डांट भी नहीं खानी पड़ती। अब ये सुनकर नानी माँ ने सबको समझाया और तुरंत बोली, अरे बिटवा, तो क्या हो गया, अब हम आ गए हैं ना, अब हम बच्चों को अच्छी तरह संभाल लेंगे और बच्चों को तुम घूमने फिरने मौज मस्ती करने दो। ये बोलकर नानी माँ मुस्कुराती हुई आहान से अलग हुई और बाकी सबसे गले मिलने लगी। नानी माँ के आने से सबके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। नानी माँ ने तुरंत जाकर आस्था को गले लगाया और अंश को गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए बोली, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये बोलकर नानी माँ ने अंश को और भी ज़्यादा प्यार किया। वहीं अब आस्था ने जल्दी से नानी माँ के कान में कुछ कहा। ये सुनकर नानी माँ ने बेचारगी से मुंह बनाते हुए कहा, क्या गोरी, तुम सच में चाहती हो कि हम ये काम करें? तभी आस्था भी बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ हाँ नानी माँ, यही सबसे ठीक है, यही काम कर सकता है। अपना दिल और दिमाग की बात सुनकर आस्था की बात मानते हुए नानी माँ बोली थी, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहोगी हम वैसा ही करेंगे। ये कहते हुए नानी माँ ने सभी से मुलाकात की। तब तक आकाश और सुमित भी वहाँ पहुँच चुके थे और उनके साथ साथ अब अविनाश और अरमान की वहाँ आ गए थे। सभी लोग एक साथ अच्छे खासे माहौल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नानी माँ ने हल्की सी हिचकी लेते हुए दादाजी की ओर देखा और बोली, भाई साहब, हम तो आज आने वाले ही नहीं थे, लेकिन बच्चों ने एक साथ इतने सारे फ़ोन कर दिए कि हमें आना पड़ा, और इसी चक्कर में हमारा एक बहुत ज़रूरी काम रह गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि वो काम कैसे पूरा होगा। ये सुनकर दादाजी हैरानी से बोले, अरे बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कौन सा काम है आपका? आप हमें बताइए, हम वो काम करवा देंगे। तभी नानी माँ ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, वो भाई साहब, आज एकादशी है और आज के दिन हमने अपने कान्हा से वादा किया था कि हम उनके मंदिर जाकर संध्या की पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे और एक घंटे का पाठ भी सुनेंगे। लेकिन देखिए, आज यहाँ आना पड़ गया और ऊपर से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अब लगता नहीं कि आज ये सब हो पाएगा। हम तो हर साल ऐसा करते आए हैं, लेकिन इस बार शायद ये सब नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही आस्था ने मासूम सी शक्ल बनाकर तुरंत कहा, नानी माँ, क्यों परेशान होती हैं आप? हम हैं ना, हम आज आपकी जगह चले जाएंगे। और वैसे भी आपके आराध्य के मंदिर तो यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर है। हम हनुमान जी के साथ जाकर पूजा भी करवा देंगे और एक घंटे का पाठ भी सुन लेंगे। तभी नानी माँ तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं बिटिया, वहाँ आदमी लोग नहीं जाते, सिर्फ औरतें और लड़कियाँ ही जा सकती हैं, और तुम इतनी रात को अकेले वहाँ कैसे जाओगी? ये सुनते ही आस्था ने राधिका, रौनक, एंजल और मारिया को इशारा किया। सभी लड़कियाँ तुरंत आगे आकर बोली, अरे दादी माँ, इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब है ना, हम सब आस्था के साथ चलेंगे, एक घंटे का पाठ भी सुनेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तभी रौनक भी बोली, हाँ हाँ, अगर लड़कियाँ कम पड़ रही हैं तो मैं हूँ ना, मैं भी साथ चलूंगी। और वैसे भी अब मुझे प्रिंसेस की चिंता नहीं है, आप आ गई हैं, आप उसका अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। जैसे ही रौनक और बाकी लड़कियों ने ये कहा, सभी लड़के मुंह खोलकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या बोला जाए। क्या इस तरह लड़कियों का रात में बाहर जाना ठीक रहेगा? तभी राधिका ने आस्था के कान में सरगोशी करते हुए कहा, लेकिन आस्था, इस तरीके से मंदिर के नाम पर जाना क्या ये ठीक रहेगा? आस्था मुस्कुराते हुए बोली, राधिका दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, और वैसे भी अपने परिवार की खुशियों के लिए भगवान भी थोड़ा बहुत झूठ बोलने की इजाज़त दे देता है। ये सुनकर राधिका हल्की से मुस्कुरा दी।
तभी सुमित ने दादी माँ की ओर देखते हुए कहा, लेकिन नानी माँ, लड़के क्यों नहीं जा सकते? इस तरह रात में लड़कियों को अकेले भेजना क्या ठीक रहेगा? इस पर रौनक तुरंत सुमित को टोकते हुए बोली, सुमित भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हम कोई नन्ही सी बच्चियाँ थोड़े ही हैं जो अकेले नहीं जा सकती। हम इतनी केपेबल हैं कि अकेले आ जा सकती हैं। क्या आप भूल गए, कल भी तो हम अकेले ही नानी से मिलने गए थे। ये सुनकर सभी लड़कों ने मुंह बना लिया। वहीं अरमान गहरी नज़रों से आस्था को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला गया। अरमान के चले जाने के बाद किसी में भी हिम्मत नहीं बची कि लड़कियों को रोक सके। सबको यही लगा कि अगर अरमान बिना कुछ कहे चला गया है तो शायद उसने भी सहमति दे दी है। तभी अभिमान जी बोले, ठीक है, आप लोग जाइए, कोई फिक्र की बात नहीं है, और अगर ज़रूरत लगे तो कुछ गार्ड्स अपने साथ ले जाइएगा। आज जिस तरह का ड्रामा घर में हुआ है, ऐसे में आप लोगों का अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। इस पर आस्था बोली, नहीं नहीं पापा जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी घर की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, अब कोई भी बाहर का अनोन पर्सन अंदर नहीं आ सकता, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंदिर जाकर थोड़ा सा पूजा पाठ करूंगी तो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरा दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा गम से भरा हुआ है। आस्था की ये बात सुनकर अभिमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जी, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर आस्था ने फटाफट सब लोगों की ओर देखा और फिर सभी तैयार होने के लिए निकल पड़े, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर राजेश की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को सिंघानिया मेंशन से बाहर ले जाकर फेंका गया था। ये पूरा दृश्य दो जलती हुई आंखों ने देख लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि संजना सिंह थी। संजना अस्पताल में राजेश से मिलने गई थी, क्योंकि उसे राजेश के बारे में सब कुछ पता था। वहां पहुंचकर उसने राजेश को देखा, जो कुछ दिन पहले ही कोमा से बाहर आया था, लेकिन अरमान के डर से उसने डॉक्टर्स को किसी को भी ये बात बताने से मना किया था कि वो होश में आ चुका है। लेकिन संजना को इसकी खबर लग चुकी थी। वो सीधे राजेश के सामने पहुंची और सिंघानिया परिवार के खिलाफ उसके कान भरने लगी। उसने राजेश को उकसाया और कहा कि अगर वो एक बार अंश को किडनैप करके उसकी जान ले ले तो वो उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। संजना की बातों में आकर राजेश को लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह सेट हो सकती है। इसी लालच और उकसावे में आकर वो एक बार फिर सिंघानिया मेंशन जाने की गलती कर बैठा, और इस बार उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे ही संजना ने राजेश को आखिरी बार देखा, वो अपने बाल नोचते हुए जोर जोर से रो पड़ी।